एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
सहारों ने सहारे पाए, डूबी कश्ती ने किनारे पाए। बेसहारों ने सहारे पाए, डूबी कश्ती ने किनारे पाए। बेसहारों ने नजरे करम हो गई आपकी जो नजरे करम हो गई आपकी जो नजरे نظاروں میں نظارے پائے، ڈوبی کشتی نے کنارے پائے، بے سہاروں نے سہارے پائے، ڈوبی کشتی نے کنارے پائے، بے سہاروں نے
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सीखने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो पिता, उन्हें तेरे वचन से आशीष दे और वे तेरे वचन को समझ करके तेरे राह में चलने सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है स्वर्ग का राज्य। आइए हम याकूब की पत्री से उसका 2:5 पढ़े। यह पवित्र शास्त्र का वचन यहाँ पर ऐसा कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वे विश्वास में धनी हो और उस राज्य के वारिस हो जिसका वादा उसने उनसे किया है और उससे प्रेम रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं। प्यारो, आज इसके विषय में हम लोग सीखेंगे, परमेश्वर जगत के कंगालों को चुना और उन्हें बड़ा बनाया, उन्हें धनी बनाता है जो उसे प्रेम करते हैं। सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया मानता है कि उसे परमेश्वर के बारे में अंतिम दिन का विशेष सत्य सौंपा गया है। स्वर्ग के राज के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि को सबसे अच्छे तरीके से कैसे साझा किया जाए, या आज हम सीखेंगे। हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। बाइबल में स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य किसी एक भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक इकाई, वर्ग या जाति से ज्यादा लोगों की एक किस्म या गुणवत्ता या स्थिति को संदर्भित करता है। स्वर्ग का राज्य वहाँ होता है जहाँ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वतंत्र रूप से और कल्पनाशील रूप से परमेश्वर के मूल्य प्रणाली को जीते हैं, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, बाइबल कहती है मत्ती 18:20 में, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ, परमेश्वर कहता है। अब परमेश्वर के पास हमेशा से ही अपने राज्य के आदर्शों को इस धरती पर जीवित रखने के लिए लोग रहे हैं। पुराने नियम में यह कुल पिता थे और फिर हिब्रू राष्ट्र, पहले आगमन के बाद से यह ईसाई धर्म रहा है। दुर्भाग्य से हर युग में अधिकांश पुरुषों और महिलाओं ने परमेश्वर को अस्वीकार या अनदेखा किया है। समय समय पर यह उनके अपने प्रतिनिधियों के लिए भी सच रहा है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने उन्हें सौंपी गई सच्चाइयों की गलत व्याख्या की है और उनका दुरुपयोग किया है। वे कई बार परमेश्वर के दयालु चरित्र को भूल गए हैं और बदले में एकांत प्रिय और संकीर्ण बन गए हैं। आइए हम मती 5:1 देखें, जहां पहाड़ी उपदेश का शुरुआत होता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाए और उसके पीछे बहुत से भीड़ भी आए जो परमेश्वर के राज के विषय में उसे सुनने के लिए आते थे। पहाड़ी के इलाका में यीशु मसीह गए और उन्हें परमेश्वर के राज के संवाद सुनाए। किसी भी धर्म ग्रंथ के अंश के संदर्भ पर विचार करना हमेशा मददगार होता है। हालांकि ऐसे विशेष मामले हैं जहां यह लगभग अनिवार्य है। यह पर्वत पर उपदेश के मामले में सच है। अपनी पुस्तक थॉट्स फ्रॉम द माउंट ऑफ ब्लेसिंग प्रेस्ट 1 में सबसे पहले एलन व्हाइट निम्नलिखित सुझाव देती हैं। आइए हम कल्पना में उस दृश्य पर वापस जाएं और जब हम पहाड़ पर शिष्यों के साथ बैठे हैं तो उन विचारों और भावनाओं में प्रवेश करें जो उनके दिलों में भरी हुई थी, यह समझते हुए कि यीशु के शब्दों का उन लोगों के लिए क्या मतलब था जिन्होंने उन्हें सुना। हम उनमें एक नई जीवंतता और सुंदरता को समझ सकते हैं और अपने लिए उनके गहरे सबक भी इकट्ठा कर सकते हैं। पहाड़ी उपदेश को हम मती 5:6-7 में पाते हैं, पर हम लोग पहाड़ी उपदेश का 5:1-12 पर ज्यादा अध्ययन करेंगे। पहाड़ी उपदेश के नाम से मशहूर इस आदेश के श्रोतागण उसके चेले और भीड़ थे जो उसके पास सुनने के लिए आए थे। हम पढ़ते हैं, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। मत्ती 5:1 कहता है, यीशु की सेवकाई कुछ समय से चल रही थी जब उसने फैसला किया कि शिष्यों को और भी भारी सुसमाचार संबंधी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। उसने सारी रात प्रार्थना की कि वह बुद्धि से कहे कि उन्हें ठीक वही सुनना चाहिए जो उन्हें सुनने की जरूरत है, ताकि वे मसीहा के रूप में उसके कार्य और भूमिका के बारे में अपने विरासत में मिली गलत धारणाओं पर काबू पा सके। शिष्य ही इच्छित श्रोता थे, लेकिन हमेशा की तरह यीशु उन सभी के साथ सच्चाई साझा करने में प्रसन्न थे जो सुनने के लिए तैयार थे। मत्ती 5:20 में हम पाते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना पाओगे। प्यारों, हमारी धार्मिकता कैसी है? यीशु मसीह अपने सुनने वालों को इस तरह का सुझाव दे रहे थे कि उनका धार्मिकता सही में वैसा होना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। शिष्य यहूदी थे और वे अपने देशवासियों की इस मान्यता से सहमत थे कि मसीहा का एकमात्र उद्देश्य यहूदा के राज्य को पुनः स्थापित करना होगा। यीशु के मिशन के बारे में उनकी समझ इन झूठी अपेक्षाओं से धुंधली हो गई थी। उन्हें सुधार की आवश्यकता थी। कभी कभी हम भी यीशु मसीह के पास झूठे उम्मीद से आते हैं। हमें सीखना है, जानना है कि यीशु मसीह हमें क्या दे सकते हैं, वह कौन है और उसके
सही बातों को समझना है और उसके पीछे चलना है। हमारा जिम्मेदारी को हमें पहचानना है। मत्ती 5:19 में लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। वह अपने शिष्यों को और सुनने वालों को कह रहे थे कि वे परमेश्वर के वचन को माने और दूसरों को भी सिखाए, उसे तोड़ना ना सिखाए। परमेश्वर और भी कहता है कि वह इस दुनिया में आया कि वह व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को दूर करने नहीं आया, उन्हें तोड़ने नहीं आया, परंतु उन्हें पूरा करने आया। वह कहता है, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यह यीशु मसीह कहता है। ईश्वर ने अपने लोगों को दो उपहार दिए थे, पहला स्वयं का ज्ञान और दूसरा सृजित प्राणियों के लिए उनके मन में जो आदर्श थे उनका ज्ञान। चुने हुए लोगों ने आदर्शों को याद कर लिया था, लेकिन उनके पीछे खड़े ईश्वर को भूल गए थे। इसलिए कानून गर्व की उपलब्धि का विषय बन गया। धार्मिक व्यक्ति ईश्वर की बजाय खुद पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इच्छुक थे, जबकि ईश्वर के मित्रों को स्वर्ग के मूल्यों की गुणवत्ता के लिए जीवित प्रमाण माना जाता है। वे समाज में ईश्वर के सच्चे ज्ञान को जीवित रखने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। आज हमारी दुनिया को इसी की सख्त जरूरत है। उद्धारकर्ता अपने प्रेम के प्रदर्शन के द्वारा पिता को महिमा देने आया। परमेश्वर का सम्मान, मसीह का सम्मान उसके लोगों के चरित्र की पूर्णता में शामिल है। द डिजायर ऑफ एजेस कहता है पृष्ठ 671 में, जब हमारे आध्यात्मिक पूर्वज परमेश्वर को भूल गए तो कानून अपने आप में एक लक्ष्य बन गया या बोझिल हो गया। हर्षित और स्वेच्छा से आज्ञाकारिता की जगह कानूनी और यांत्रिक आज्ञाकारिता ने ले ली। जब हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की अद्भुत कृपा का अनुभव करते हैं तो उसे प्रसन्न करना हमारे सर्वोच्च आनंद और संतुष्टि का स्रोत बन जाता है। यह परमेश्वर के बारे में गलत फहमी का अंधकार है जो दुनिया को घेरे हुए है। मनुष्य अपने चरित्र के बारे में अपना ज्ञान खो रहे हैं। इसे गलत समझा गया है और गलत व्याख्या की गई है। इस समय परमेश्वर की ओर से एक संदेश की घोषणा की जानी है, एक ऐसा संदेश जो अपने प्रभाव में प्रकाशमान हो और अपनी शक्ति में उद्धारक हो। उसके चरित्र को जाना जाना है। परमेश्वर का राज्य यही है। स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य वाक्यांश वस्तुत एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वे परमेश्वर के मूल्यों और उनके उद्धार के प्रस्ताव की उपस्थिति को संदर्भित करते हैं। पुराने नियम के इतिहास में ऐसे समय थे जब परमेश्वर के मूल्य और उनके उद्धार के प्रस्ताव चमकते थे, और ऐसे भी समय थे जब ये मुश्किल से दिखाई देते थे। हालांकि यह यीशु का जीवन था जिसने परमेश्वर के राज्य का सदस्य होने का क्या अर्थ है इसकी पूरी रोशनी दी। मसीह के समय से ईसाई कलीसिया ने इस रोशनी को उज्जवल रखने की कोशिश की है, कुछ सफलता और कुछ विफलता के साथ। लूका 17:20 कहता है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। संसार में स्वर्ग का राज्य कितना प्रत्यक्ष है, इसे आइए हम आगे सीखें। परमेश्वर का राज्य बाहरी दिखावे से नहीं आता, यह उसके वचन की प्रेरणा की कोमलता के माध्यम से, उसकी आत्मा के आंतरिक कार्य के माध्यम से, आत्मा की उसके साथ संगति के माध्यम से आता है जो उसका जीवन है। इसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रगटीकरण मानव स्वभाव में देखा जाता है जो मसीह के चरित्र की पूर्णता तक लाया जाता है। लुका में यह अंश संकेत करता है कि पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के सदस्यों को केवल बाहरी तरीकों से पहचानना मुश्किल है। यूहन्ना 1:11 में हम पढ़ते हैं और पाते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोगों के पास आया, लेकिन वे लोग उसको नहीं पहचान पाए। यीशु द्वारा ईश्वर के राज्य में सदस्यता की पेशकश को उनके अधिकांश देशवासियों ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ईश्वर के राज्य में सदस्यता की पेशकश करने के उनके अधिकार को चुनौती दी, क्योंकि राज्य के बारे में उनका वर्णन उनके वर्णन से बहुत अलग था। यहूदी लोग ईश्वर के राज्य की स्थापना उसी तरह से करना चाहते थे जैसा दुनिया के राज्य। धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बाहरी उपायों का सहारा लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए परमेश्वर को दर्शाने, उसका चरित्र को दिखलाने और इस धरती में अनुग्रह और प्रेम का राज्य स्थापना करने के लिए वह आए थे। जैसे कि उसके प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए पृथ्वी को अपने खजाने का उत्पादन करना चाहिए, वैसे ही उसके नैतिक नियमों का पालन करते हुए लोगों के हृदयों को उसके चरित्र के गुणों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यहाँ तक कि बुद्धपरस्त लोग भी उन लोगों की श्रेष्ठता को पहचानेंगे जो जीवित परमेश्वर की सेवा और आराधना करते हैं। यहूदी लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छा फल लाने में विफल हुए, लेकिन आज जो अपने लोगों को चुनता है, विश्वासियों को, वह चाहता है कि वे लोग आत्मा का फल लाएं। और उसके लोगों को प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, जैसा कि हम यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना में पाते हैं। यीशु ने अपने देशवासियों द्वारा पोषित कानून और प्रेरित दिशा निर्देशों को अस्वीकार नहीं किया। जब यीशु अपने स्वर्ग पिता के सिंहासन पर चढ़े, तब स्वर्ग का राज्य पृथ्वी से वापस नहीं लिया गया था। अपने सांसारिक मित्रों के जीवन में उनकी आत्मा के कार्य के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के सच्चे सिद्धांतों को तब तक आकर्षक और अत्यधिक दृश्यमान रखा जाना था जब तक कि वह फिर से न आ जाए। मत्ती 13:33 में हम पढ़ते हैं धार्मिकता का राज्य कैसा फैलता है। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है। यहाँ कहता है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। इसी तरह परमेश्वर का राज शुरू में छोटा से शुरू होता है, लेकिन उसका सच्चाई और उसका धार्मिकता पूरा दुनिया में फैल जाता है। जैसे खमीर जब भोजन के साथ मिल जाता है तो भीतर से बाहर की ओर कार्य करता है, वैसे ही हृदय के नवीकरण द्वारा परमेश्वर की कृपा जीवन को रूपांतरित करने का कार्य करती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस या उस बुरी आदत को सुधार करने का प्रयास करते हैं और वे इस तरह से मसीह बनने की आशा करते हैं, लेकिन वे गलत जगह से शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पहला कार्य हृदय से है। सच्ची आज्ञाकारिता भीतर के सिद्धांत का कार्यान्वयन है। यह धार्मिकता के प्रेम से, परमेश्वर के नियम के प्रेम से उत्पन्न होती है। सभी धार्मिकता का सार हमारे उद्धारक के प्रति वफादारी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, हम उसके प्रति वफादार होंगे। अपने लोगों के माध्यम से मसीह को अपने चरित्र और अपने राज्य के सिद्धांतों को प्रकट करना है। इसके अलावा हमें परमेश्वर की स्तुति मूर्त सेवा के द्वारा करनी है, उसके नाम की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करना है। परमेश्वर हमें अपने उपहार प्रदान करता है ताकि हम दे सके और इस प्रकार दुनिया को उसके चरित्र से अवगत करा सके। मसीह के हर सेवक के लिए एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि वह अपने काम को उन लोगों की स्थिति के अनुसार ढाले जिन्हें वह लाभ पहुंचाना चाहता है। कोमलता, धैर्य, निर्णय और दृढ़ता समान रूप से आवश्यक हैं, लेकिन इनका उचित विवेक के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों में विभिन्न वर्गों के मन के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना एक ऐसा काम है जिसके लिए परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रबुद्ध और पवित्र बुद्धि और निर्णय की आवश्यकता होती है। एलन व्हाइट से यह बात हम नोट करें, वह कहती हैं, परमेश्वर का वचन प्रत्येक युग के लिए विशेष सत्य प्रस्तुत करता है। परमेश्वर अपने लोगों को कदम दर कदम आगे ले जा रहा है। सत्य प्रगतिशील है। प्यारो, हम परमेश्वर की ओर आंखें लगाए हुए हैं। उसका ज्योति हमें मिलता है, उसका प्रकाश हमें मिलता है, और जब हम उसे मानते हैं, हम कदम दर कदम प्रकाश में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का सत्य प्रगतिशील है। प्यारो, स्वर्ग का राज्य कोई दृश्यमान या मूर्त इकाई नहीं है, जैसे कि कोई स्थान या लोगों का कोई विशेष समूह हो, बल्कि यह परमेश्वर के चरित्र का प्रतिबिंब है जो उसके अनुयायियों, उसके पीछे चलने वालों के जीवन के माध्यम से दर्शाया गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हम उसके पीछे चले। वह कहते हैं कि हम इस दुनिया में ज्योति के नाई चमके। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और वह हमें भी, उसके अनुयायियों को जो उसके पीछे चलते हैं, दुनिया के लिए ज्योति बनाते हैं। क्या आप उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसके सत्य को मानना चाहते हैं और उसके लिए ज्योति होना चाहते हैं? यदि आप यह चुनते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देवे, बहुताय से आशीष देवे और आपको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरी उपासना करते हैं। हम इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें तेरे वचन दिया है कि जो लोग तेरे पीछे आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएंगे, तेरे वचन को सुनेंगे, तेरे राह में चलेंगे, वे लोग खुशी और आनंद पाएंगे, उन्हें तो स्वर्ग राज ले जाएगा। पिता परमेश्वर, हमें मदद कर कि हम सच्चाई का रास्ता में चल सके। हमें तेरा पवित्र आत्मा दे, उसका शक्ति दे और हम सबों को तेरे राह में चला, हम सबों को तेरा राज में पहुंचाने के नाम से मानता हूं। सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।